कुछ भी प्रारंभ करने के पहले क्योंकि बाहर बारिश, यहाँ बारिश हो रही है, माँ की कृपा बरस रही है, और वहाँ पे पता नहीं गोले बारूद की बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा हम लोग थोड़ी देर का, कुछ क्षण का मौन रख के भारतवर्ष के लिए, बल्कि सत्य की विजय के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, फिर हम लोग प्रारंभ करेंगे। माँ से जब 71 के वार में, युद्ध में किसी ने पूछा था कि माँ भारत की को हम क्या करें, कोई मंत्र दीजिए भारतवर्ष के लिए जिससे हम सहायता कर सकें, क्योंकि युद्ध कहीं भी होता है, कई भूमि पर लड़ा जाता है, बाहर का युद्ध होता है, भीतर का युद्ध होता है, भीतर का युद्ध उतना ही आवश्यक होता है। एक सावित्री में कल भी इसकी बात हो रही थी, पंक्ति आती है जिसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, फिफ्थ कॉलमनिस्ट स्पेनिश सिविल वार के वो लोग थे जो भीतर घात करते थे, तो वो क्या करते थे, उनका काम ये रहता था कि जो युद्ध लड़ रहे हैं उनको हतोत्साहित करना। तो ये एक हम सबके अंदर एक फिफ्थ कॉलमनिस्ट होता है जो हमको आगे बढ़ने से रोकता है, डाउट्स ले आएगा, शंका, भय इत्यादि। तो ये आवश्यक है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी सीमाओं में, अपनी अपनी भूमि पर अपने ढंग से इसको कंट्रीब्यूट करे वार के प्रति। कई बार ये प्रश्न उठता है कि युद्ध का क्या लेना देना, हम तो योग करने आए हैं, इस योग का हर चीज़ से लेना देना है, ये समग्र जीवन का योग है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम कट करके देख सकते हैं कि भाई हमको तो यहाँ बस अंदर जाना सीखना है, युद्ध तो लड़ें, लोग लड़ते हैं, राष्ट्र लड़ते हैं, मनुष्य लड़ते हैं, ये प्रवृत्ति इस योग में नहीं है। और उसका एक कारण है, पूरे अगर इसके पाशर में भी जाएं, श्री अरविंद ने द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में ये कहा था, दिस इज मदर्स वार, मदर्स योग की बात तो हम लोग करेंगे, मदर्स वार, ये वर्ड्स हैं उनके द्वितीय विश्व युद्ध के विषय में। और जब उनके आश्रम में लोग, कुछ लोग थे जो हिटलर के साथ खड़े थे, और उनकी बुद्धि इस तरह से कार्य कर रही थी कि शत्रु का शत्रु, बहुत ज़्यादा जब आप पढ़ लेते हैं ना पंचतंत्र तो ये समस्या होती है, तो वो शत्रु का शत्रु मित्र, तो उनको लगा कि जर्मनी शत्रु है इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड हमारा भी शत्रु है, तो मित्र, आपने देखा होगा सुभाष चंद्र बोस हाथ भी मिलाने गए थे। तो श्री अरविंद ने यहाँ तक कहा था, यदि तुम लोग चाहते हो कि मैं इस आश्रम को बंद कर दूं तो मैं स्वयं ही बंद कर दूंगा, रादर देन हिटलर को यहां पर बुलाना। तो ये योग कई भूमि पर चलता है, ये वो वाला योग नहीं कि जब हम बस केवल बैठ करके भीतर में ध्यान करते हैं, वो है इसका भाग, आवश्यक भाग है किसी भी योग का, लेकिन ये समग्र योग है जिसमें हर चीज को हम एक योगिक दृष्टि से देखते भी हैं और उसमें हम पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध में श्री अरविंद और माता जी ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। अब यहां से प्रश्न आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्यों किया था उन्होंने, वो अब इस युद्ध से कनेक्टेड है। संसार में दो प्रकार के युद्ध होते हैं, एक जो भूमि के लिए, वो जो इट्स नॉट ए गुड सेइंग सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट, कि तीन कारण से युद्ध लड़े जाते हैं, ये केवल एक बहुत ही सतही सोच है। लेकिन अगर गहराई से देखें तो युद्ध एक समय था जब युद्ध लड़े जाते थे एक्सपेंशन के लिए, भूमि के विस्तार के लिए, राज्य के विस्तार के लिए, कल्चर के विस्तार के लिए, सारे वो एक समय था जब युद्ध इसलिए लड़े जाते थे। किंतु एक और युद्ध है जो आज का नहीं है, इसके नाम रूप बदलते रहते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल युद्ध है जिसके हमारे शास्त्रों में देवासुर संग्राम के रूप में बात हुई है। और हम लोग जब पढ़ते हैं पुराणों में तो हम देखते हैं कि देवासुर संग्राम में ऐसे मनुष्य भी थे जो देवताओं की तरफ से लड़ते थे, एंड वाइस वर्सा। तो वो कैसे लड़ते थे, अब पिक्चराइज, अब टेलीविजन देखेंगे तो बहुत ही फैंटास्टिक पिक्चर आएगी कैसे, उन पर श्री अरविंद ने लिखा भी है, उनका एक काव्य है पुरुरवा, इसी पर है पुरुरवा, देवासुर संग्राम में युद्ध करके देवताओं की विजय करने के बाद आ रहे हैं। केन उपनिषद में कहानी है पूरी, देवासुर संग्राम के बाद देवताओं की विजय होती है, उससे जो उसका सेकंड साइकिल है प्रारंभ वहां से होता है कि किसकी विजय है, विजय का अर्थ क्या है। तो ये एक भाग है, जीवन के अंदर भी युद्ध होता है। एसेज ऑन द गीता में श्री अरविंद, पूरा उनके दो चैप्टर हैं, मैन एंड द बैटल ऑफ लाइफ, और दूसरा है कुरुक्षेत्र। तो युद्ध, गीता स्वयं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्क्रिप्चर्स एवर गिवन टू मैनकाइंड, उसकी कंटेक्स्ट देखिए, मतलब कई बार आश्चर्य होता है कि भारतवर्ष की अनेकों अनेकों अद्भुत चीजों में से एक ये है कि जो जिसको योग योगेश्वर कृष्ण के नाम से द ग्रेटेस्ट गॉस्पिल ऑफ वर्क्स एवर गिवन टू मैनकाइंड, श्री अरविंद के शब्द हैं, कहां दी जा रही है? किसी आश्रम में बैठ के नहीं दी जा रही है। कंटेक्स्ट क्या है? घोर नरसंहार होने वाला है, ऐसा नरसंहार कि 18 अक्षौहिणी सेना में से केवल 18 लोग बचते हैं एट द एंड ऑफ द महाभारत वॉर। वहां पे श्रीमद भगवद गीता दी जाती है मनुष्य को, और उसमें श्री कृष्ण किस चीज के लिए प्रेरित कर रहे हैं? अब अर्जुन के तो दिमाग में वो सारे गांधी जी से लेकर सारे वो विचार भरे हुए हैं, संन्यास, और श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, तो कितने प्रकार के भय से ग्रसित है। और अंत में कहते हैं युद्ध, तो धनुष उठा और युद्ध कर और मेरा स्मरण करते हुए। और अंत में जब उनका विश्व रूप का दर्शन होता है कि सब कुछ में भगवान है, और तब वो कहते हैं नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया आपका दर्शन करने के बाद। तो भगवान का दर्शन हर प्रकार की जुगुप्सा, मोह, भय, इनका विनाश कर देता है, समूल नाश कर देता है। तो हमारी दृष्टि बदल जाती है चीज़ों के प्रति। माँ के दो एसेज हैं, उनकी ओर भी मैं संकेत करूँगा, वॉल्यूम 2 में है, वर्ड्स ऑफ लॉन्ग एगो, उसमें एक है वार एंड द विमेन, फेमिनिज्म की ऑर्गेनिक उत्पत्ति युद्ध से हुई। आज हम उसको फेमिनिज्म की बात करते हैं, ऑर्गेनिकली क्यों हुई? पुरुष दे वर डाइंग इन द वार, तो आवश्यकता थी कि कोई ड्राइविंग करे, कोई सेवा शुश्रूषा करे, तो दे हैड नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं, विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि विमेन को वार में एंगेज करने के। माँ भी उस युद्ध में, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि माँ फ्रंट पे जाकर के सोल्जर जो आते थे तो उनकी नर्सिंग केयर करना, ये सब माँ ने किया है। और उस समय वो उनका पूरी नर्वस सिस्टम उसके कारण प्रभाव पड़ा था। और फिर माँ बताती हैं, फिर एक पूरा ऐसे है वार के ऊपर है कि युद्ध क्या होता है, और जो उनका विजन है कि काली और रुद्र की शक्तियां कार्य कर रही हैं, तो उसको देखने की दृष्टि हमारी बदलनी चाहिए। तो एक तो युद्ध होते हैं जो जमीन के एक्सपेंशन के लिए, और उसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक जहां एक्सपेंशन हम करते हैं, दूसरी सभ्यताओं के विनाश के लिए। ये एक प्रकार के युद्ध होते हैं, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि केवल एक ही कल्चर, एक ही संस्कृति, एक ही जीवन शैली सारे संसार के ऊपर थोप दी जाए। ये एक प्रकार के युद्ध होते हैं। और दूसरे जो युद्ध होते हैं उनको युद्ध की जगह अश्वमेध यज्ञ कहा गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अश्वमेध यज्ञ क्यों कहा गया? और अश्वमेध यज्ञ की अगर ओरिजिनल सेंस देखेंगे जो बृहदारण्यक उपनिषद में दी गई, तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो यज्ञ क्यों है, ये क्या, कौन सा यज्ञ है, इसमें किस बात की आहुति दी जा रही है? अश्वमेध की यज्ञ की जो उत्पत्ति है, ये प्रारंभ में भारतवर्ष में भरत जिनके नाम से, वन ऑफ द किंग जिनके नाम से शायद भारतवर्ष है, तो वो 10 राजाओं को पराजित करते हैं जो युद्ध लड़ते हैं, और इसलिए उनको 10 राजनेय भी कहा गया। और परास्त करने के बाद अब सारे राजा और भरत ये मिलकर एक संधि करने वाले हैं कि अब हम क्या करेंगे। अब ये सारे जो राज्य थे, उस समय भारत नहीं कहा जाता था, आर्य भूमि पर ये जो भूखंड हैं इस पर क्या किया जाएगा, जम्बुद्वीप कैसे गवर्न करेंगे, तो वशिष्ठ ऋषि आके यज्ञ करते हैं। और वो उस यज्ञ में कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हैं, कुछ सिद्धांत, कि जो कुछ भी अब संपत्ति होगी इस पर सबके साथ एक समान अधिकार। अब देखिए कितना डिफरेंस है, एक ओर कॉन्क्वेस्ट हो रही है विनाश करने के लिए, दूसरी ओर कॉन्क्वेस्ट हो रही है एनरिच करने के लिए। कि यहां पर अब युद्ध होगा तो सबकी जो भूभाग है और जो उसके साथ में धन संपत्ति है, अब वो जाएगी एक व्यक्ति के पास, राजा के पास जाएगी, जो मुख्य जो जीता है। लेकिन अब वो इस तरह से करेगा कि अब वो केवल अपने प्रजा का सोच रहा है ऐसा नहीं, ये भी उनकी प्रजा है, उनके बारे में भी सोचना। और उसमें ये भी आता है कि वो जो जो भी, जिस भी, जैसी भी उनकी संस्कृति उस समय थी, उसको वो लोग फलने फूलने पनपने देंगे। इस तरह से भारत बहु संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ा है। इट्स सो इंटरेस्टिंग कि युद्ध भी एक मींस था यूनिफिकेशन का। इसको शेरविंद ह्यूमन साइकिल में बहुत विस्तार से बताते हैं, वार इज ए मींस ऑफ यूनिफिकेशन। ये भारतवर्ष में ये दोनों, तो एक होता है जहां एक्सपेंशन, ब्लाइंड एक्सपेंशन, फिनिशिंग द सिविलाइजेशन, दूसरा होता है जहां पे एनरिचिंग द सिविलाइजेशन। तो दोनों मिलते हैं, क्लास्प होता है, रेसिल होता है, बाद में एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे को, सभ्यताओं को एनरिच करते हैं। तो ये एक दूसरे प्रकार का युद्ध होता है। अब देवासुर संग्राम में क्या हो रहा है, असुर हैं जो श्री अरविंद वर्णन करते हैं कि रिवोल्टेड फ्रॉम, ये जो हैं ये निश्चेतना से उठ रहे हैं और वो रिवोल्ट करते हैं प्रकाश के प्रति। ये सब हम सब के अंदर ये युद्ध लड़ा जाता है, तो रिवोल्ट करते हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि जो कुछ भी विकास हो रहा है वो नीचे की ओर चला जाए। तो अगर एक शब्द में मॉडर्न लैंग्वेज में कहें तो इट इज रिग्रेसिव आइडिया एंड रिग्रेसिव आइडियोलॉजी। जो भी कोई संस्कृति हमें हजारों साल पीछे की ओर, जहां पर एक रास्ता है, अनेकत्व का कोई स्थान नहीं है, वो रिग्रेसिव आइडियोलॉजी है। यहां बहुत सरल शब्दों में स्पष्ट रूप से हमको ये समझना चाहिए, इसमें कोई रिलीजन और इसका कोई ताना बाना पहनाने की जरूरत नहीं है। और जो भी आइडियोलॉजी जो विविधता को लेकर के आगे बढ़ रही है, और अगर वो पास से कनेक्ट करती है तो वो आगे विकास के लिए कनेक्ट करती है, यानी वो विकास क्रम की धारा से जुड़ी हुई है, वो प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी है। इसीलिए श्री अरविंद जब द्वितीय विश्व युद्ध में वो कहते हैं कि अगर नाजी जर्मनी जीतता है तो ये रिग्रेशन की ओर ले जाएगा। क्यों? नाजी जर्मनी क्या चाहता था? वो ये चाहता था सब लोग एक ही ब्लड के, एक ही जैसे, उसमें उसने कर दिया था ये सुपीरियर टाइप है, और जो बाकी हैं वो हमारे जैसे नहीं हैं। कुछ याद आ रहा है? हम अलग हैं और ये हमारे जैसे नहीं हैं, और ये जो हमारे जैसे नहीं हैं उनको नष्ट करने का, उनको मार डालने का हमारा अधिकार है। कुछ समझ आ रही है? तो सुनते हैं हम लोग। अब इसको हम रिलीजन से नहीं जोड़ रहे हैं, हम एक मानव की विचारधारा है जो जुड़ी है, धर्म से जुड़ गई है, जो भी उसकी बैकग्राउंड था वो इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरी ओर एक विचारधारा ये है कि सबको विश्व बंधुत्व को लेकर के साथ में चलना, विविधता, अनेक एकता में अनेकता, ये एक दूसरी विचारधारा है। तो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध चलता रहा, अगर आप इसको देखें तो ये एक प्रकार से एक सिंबॉलिक युद्ध है, एक ओर विभाजन की शक्ति है। ये क्यों बार बार होता है ये युद्ध, आप देखें तो एक ओर इसमें बहुत एक्सट्रीम विभाजन की शक्ति है। विभाजन किस आधार पर हुआ? आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पर हुआ, रिलीजियस ग्राउंड पर हुआ। बाकी जगह जो विभाजन हुए हैं वो अलग प्रकार की चीजें, यहां पर प्योर रिलीजियस ग्राउंड। हम अलग हैं, तुम अलग हो, हम नहीं रह सकते साथ में, तो हमको एक अलग भूमि चाहिए। अब वहां तक ठीक है, आपको अलग भूमि चाहिए, लेकिन नहीं, अब हमको तुम्हारी भी भूमि चाहिए और तुमको भी हम नहीं जीने देंगे। तो ये एक युद्ध जो है भारत और पाकिस्तान का, हमको ये समझना चाहिए, इसमें एक ओर एक प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी है, दूसरी ओर एक रिग्रेसिव आइडियोलॉजी है। जो भय, आक्रांता, जो आपको आपके आत्मविश्वास को, गौरव को नष्ट करना चाहता है कि हम देखो हम अच्छे हैं, हम सबसे अच्छे हैं, और दूसरी ओर एक आइडियोलॉजी है जो लेकर के साथ चलना चाह रही है। तो ये भूल नहीं करनी चाहिए ये समझने की कि ये युद्ध केवल एक दो राष्ट्रों के बीच का युद्ध है, इससे हमको क्या लेना देना। राष्ट्रों के बीच युद्ध होते हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध ऐसा ही कुछ युद्ध है, उसका एक अलग भूमि है, लेकिन यह जो युद्ध है इसकी भूमि अलग है। एक तरफ की विजय मतलब भय, आक्रांता, इन चीजों की विजय है, और दूसरी तरफ की विजय एक प्रकार से प्रगति की धारा में चलने वाली विजय है। यहां पर हमको इन पार्टी पॉलिटिक्स हर चीज से अलग करके देखना चाहिए। लेकिन हमको प्रार्थना क्या करनी चाहिए, अब वहां पे हम लोग पहले सूत्र पे आ जाते हैं। प्रार्थना तो यही करनी चाहिए कि सत्य की विजय हो और किसी की नहीं। बहुत सुंदर केन उपनिषद की कहानी में यह स्पष्ट किया जाता है, देवता सोच रहे कि हमारी विजय है। अब देखिए इसको पार्टी से अगर जोड़ेंगे तो कोई पार्टी की भी हम क्लेम कर रहे हैं विजय, और तब अचानक यक्ष प्रकट होते हैं। ये कहानी बड़ी सुंदर है, सुनी होगी हम सब ने, बट इट्स वर्थ रिमेम्बरिंग। दे आर पार्टिंग लिटरली कि वी हैव वन द वार। तो भगवान यक्ष के रूप में प्रकट होते हैं। अब यक्ष कौन होते हैं? ये मिड वर्ल्ड के बीइंग्स होते हैं, ये अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, यू कांट कैटेगराइज देम, दे कैन वर्क आइदर वेज, तो वो पहचानना मुश्किल है। यक्ष यक्षिणी, दे कैन बी ऑफ एनी काइंड, सो वो एक अलग अपने आप में एक पूरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, विषय है। तो वो जब प्रकट होते हैं तो देवता कहते हैं ये कौन है, अनइनवाइटेड कौन आ गए हैं, आइडेंटिटी कार्ड चेक करो। तो आइडेंटिटी कार्ड, वो कहते हैं मैं नहीं ले जाता आइडेंटिटी कार्ड, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू पुट माई सेल्फ इन दिस और दैट कैटेगरी। तो फिर वो अग्नि जाते हैं, वायु जाते हैं, फिर अंत में इंद्र जाते हैं जानने को कि ये कौन है, और सब परास्त होके नहीं जान पाते हैं। और तब इंद्र को डिवाइन मदर के रूप में, लंबी कहानी में इसको संक्षिप्त में, उमा हेमवती के रूप में माँ प्रकट होती हैं, और वो कहती हैं कि वास्तव में ये और कोई नहीं है, ये तो स्वयं इटर्नल है, भगवान है, शाश्वत सत्य है। यह रूप धर के इसलिए आए थे तुम लोगों को यह बताने को कि यह विजय तुम्हारी नहीं है, यह विजय ईश्वर की है। और अब यह क्यों बताया जाता है, उसमें यह कनेक्टेड है श्री अरविंद के योग से, क्योंकि अगर हम ये समझ लेते कि हमारी विजय है तो हम वहां रुक जाते हैं, और जब हम ये सोचते हैं कि भगवान की विजय है तो भगवान आज इस प्रकार से अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कल हो सकता है बिल्कुल नए ढंग से अभिव्यक्त करें, यह संभव है। तो हमको हमेशा वो डोर खुला रखना चाहिए कि भगवान की विजय है। तो माता जी से जब मंत्र पूछा गया तो माँ ने देखा जाए तो वही मंत्र दिया जिसको श्वेताश्वतर उपनिषद कहती है, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयाना, तो सत्यमेव जयते। लेकिन माँ ने कैसे दिया उसको, सुप्रीम लॉर्ड इटर्नल ट्रूथ लेट अस ओबे दी अलोन एंड लिव अकॉर्डिंग टू ट्रूथ। ये मंत्र उन्होंने 71 के वार में दिया था जब एक डिसाइपल ने, आई थिंक उदार पिंटो थे, उन्होंने पूछा था कि हम क्या करें अपनी ओर से, तो उन्होंने ये मंत्र दिया था कि सुप्रीम लॉर्ड इटर्नल ट्रूथ। अब इसमें कर्म भी है कि वह जो शाश्वत सत्य है उसकी विजय हो, हम आपका ही अनुसरण करें, आपको ही हम ओबे करें, और सुप्रीम लॉर्ड इटर्नल ट्रूथ लेट अस ओबे दी अलोन एंड लिव अकॉर्डिंग टू ट्रूथ, उस प्रकार से हमारा जीवन हो। और जैसे जैसे हम ये जीवन जिएंगे युद्ध की संभावनाएं भी समाप्त होगी और संसार एक नई दिशा की ओर जाएगा। दैट्स द ओनली वे कि हम वार को एंड कर सकते हैं। ये भी कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि इसका कब अंत होगा, कब अंत होगा। तो इसके दो उत्तर हैं, आक्रांताओं का अंत कब होगा, जब मनुष्य के अंदर से भय का अंत हो जाएगा। मां बताती है एडवर्स फोर्सेस के बारे में। कई बार लोग मेडिसिन के क्षेत्र में भी पूछते हैं कि भाई ये बीमारियां कब खत्म होगी, जब हम भगवान के ऊपर पूरा श्रद्धा रखेंगे और रोग में विश्वास नहीं करेंगे। अभी हम लोग बहुत विश्वास करते हैं, यह रोग है वह रोग है, बहुत कठिन है, हाँ कठिन चीज ही करनी है। तो ये इस प्रकार से जब भय से मनुष्य का विश्वास उठ जाएगा, जब भय से मुक्त हो जाएगा, तो आक्रांताओं का स्थान नहीं रहेगा ऑटोमेटिकली। माँ से किसी ने पूछा था एडवर्स फोर्सेस संसार से कब जाएंगी, तो माँ कहती है कि अभी इनका रोल है, जब तक इनका रोल रहेगा तब तक ये रहेंगी। तो रोल क्या है माँ, ऐसे लोगों का क्या रोल है, माँ कहती है तुम्हारे अंदर सिंसेरिटी लाने के लिए। वास्तव में दे आर ओरिजिनली इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सिंसेरिटी। अब एडवर्स फोर्सेस क्या करती हैं, वो आपको बहुत क्रिटिसाइज करेंगी। अब वो दूसरे नहीं भी करेंगे तो फिफ्थ कॉलमनिस्ट की बात हुई ना, अंदर आकर के तुम तो योग साधना यू आर अनफिट, तो बेकार के तुम इसके लिए उपयुक्त तो नहीं हो। और अगर आप अंदर से नहीं सुनोगे बाहर से भी करेंगी, हर जगह से। तो अगर ये अब कई लोग उसमें बुरी तरह उलझ जाते हैं, तो माँ कहती है दे आर एडवर्स फोर्सेस। ये सच है कि वो भगवान का कार्य नहीं कर रही है, लेकिन उनका जो औचित्य है वो ये है कि जब तक इनसिंसेरिटी रहेगी रहेंगी। तो फिर माँ से कहा तो फिर ये एडवर्स फोर्सेस क्यों हैं, तो अच्छा काम कर रही हैं। तो माँ बड़ा सुंदर उत्तर देती हैं, माँ कहती है बिकॉज दे डोंट बिलीव इन ग्रेस, दे डोंट बिलीव इन ग्रेस। उनके हिसाब से कृपा से कुछ नहीं होता, आपको ही करना है जो करना है। तो अब ऐसे अगर योग किया जाए तो इनसिंसेरिटी कहाँ नहीं होगी। माँ ये कहती हैं कि तुम्हारी सिंसेरिटी की पहचान ही यही होती है, प्रारंभ कहाँ से होती है, जब तुम खुद को देखो और कहो इनसिंसेरिटीज हैं। और जब तक हम दूसरों में दोष देख रहे हैं, अन्य व्यक्तियों में, संसार में, समाज में, तब तक हमने प्रारंभ ही नहीं किया है। इनसिंसेरिटी प्रारंभ वहां से होती है ना, कि मेरे अंदर है तो हम देखने लगते हैं। और उसी प्रकार से जैसे जैसे हम खुद को आत्मविजय की ओर जाते हैं, कोई भी एक वृत्ति अपने ऊपर हम कॉन्कर करते हैं माँ की सहायता से, उतना संसार के प्रति, लोगों के प्रति हमारे अंदर सहिष्णुता, उदारता जागती है। क्योंकि हमको पता चलता है कि कितने पापड़ बेलने होते हैं एक छोटी सी चीज को कॉन्कर करने के लिए। है ना, छोटी सी चीज, मक्खी आसपास भिनभिना रही हो, अब करिए मेडिटेशन। बाकी समय तो बहुत अच्छा है बैठ के एक अच्छे, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल प्लेस बाय द वे, बैठ के मेडिटेशन करना। अब देखिए कैसे वो विचार के रूप में मक्खी आ जाए या वैसे आ जाए, और प्रारंभ हो जाता है सारा ध्यान वहां की। बाकी सब तो बहुत अच्छा था, मक्खियां थी। दामाद जी के वो क्या होते थे, फूफा जी, असंतुष्ट फूफा। परात में सारे चर्चे उनके होते थे। तो ये जो प्रवृत्ति की वो जस्ट टू सी दैट नेट पिकिंग द फॉल्ट, तो ये एडवर्स फोर्सेस इस तरह से कार्य करती हैं, और उनका वो तब तक करती हैं, तो युद्ध भी तब तक। ये सब जो वार्स कब समाप्त होंगे, मानव की चेतना जब और अधिक हम सत्यनिष्ठ होंगे और अधिक हम प्रगति की ओर जाएंगे, जितना हम आगे बढ़ेंगे ये चीजें पीछे छूट जाएंगी। और अगर हम उसी भूमि पर खड़े होकर के घृणा द्वेष इसमें करते रहेंगे तो वो पिक्चर रिपीट होती रहेगी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। तो अभी हम लोग केवल 2 मिनट का मौन रख के माँ से प्रार्थना करेंगे। सुप्रीम लॉर्ड, इटर्नल ट्रूथ, लेट अस ओबे दी अलोन एंड लिव अकॉर्डिंग टू ट्रूथ।